संबंध। अब भगवान आगे के 49वें श्लोक में सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले सांख्य योग के अधिकारी का वर्णन करते हैं।
असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सम्यासेनाधिगच्छति।
जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो स्पृहा रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। संन्यास योग का यानी सांख्य योग का अधिकारी होने से ही सिद्धि होती है, अतः उसका अधिकारी कैसा होना चाहिए यह बताने के लिए श्लोक के पूर्वार्ध में तीन बातें बताई हैं। असक्त बुद्धि ही सर्वत्र, जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, अर्थात देश काल घटना परिस्थिति वस्तु व्यक्ति क्रिया पदार्थ आदि किसी में भी जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती। जितात्मा, जिसने शरीर पर अधिकार कर लिया है, अर्थात जो आलस्य प्रमाद आदि से शरीर के वशीभूत नहीं होता, प्रत्युत इसको अपने वशीभूत रखता है। तात्पर्य है कि वह किसी कार्य को अपने सिद्धांत पूर्वक करना चाहता है तो उस कार्य में शरीर तत्परता से लग जाता है, और किसी क्रिया घटना आदि से हटना चाहता है तो वह वहां से हट जाता है। इस प्रकार जिसने शरीर पर विजय कर ली है वह जितात्मा कहलाता है। विगत स्त्रीह, जीवन धारण मात्र के लिए जिनकी विशेष जरूरत होती है, उन चीजों की सूक्ष्म इच्छा का नाम स्त्रीहा है। जैसे साग पत्ती कुछ मिल जाए, रूखी सूखी रोटी ही मिल जाए, कुछ न कुछ खाए बिना हम कैसे जी सकते हैं, जल पिए बिना हम कैसे रह सकते हैं, ठंडी के दिनों में कपड़े बिल्कुल न हो तो हम कैसे जी सकते हैं। सांख्य योग का साधक इन जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं की भी परवाह नहीं करता। तात्पर्य यह हुआ कि सांख्य योग में चलने वाले को जड़ता का त्याग करना पड़ता है। उस जड़ता का त्याग करने में उपर्युक्त तीन बातें आई हैं। असक्त बुद्धि होने से वह जितात्मा हो जाता है, और जितात्मा होने से वह विगत स्पृह हो जाता है, तब वह सांख्य योग का अधिकारी हो जाता है। नैष्कर्म सिद्धिम परमाम सम्यासेनाधिगच्छति, ऐसा असक्त बुद्धि जितात्मा और विगत स्पृह पुरुष सांख्य योग के द्वारा परम नैष्कर्म सिद्धि को अर्थात नैष्कर्म रूप परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। कारण कि क्रिया मात्र प्रकृति में होती है, और जब स्वयं का उस क्रिया के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं रहता, तब कोई भी क्रिया और उसका फल उस पर किंचन मात्र भी लागू नहीं होता। अतः उसमें जो स्वाभाविक स्वतः सिद्ध निष्कर्मता निर्लिप्तता है वह प्रकट हो जाती है।